ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஆஜ் கே சுந்தர் சாந்திகாலின் சத்ர மே பிராணேஸ்வர் பாப் தாதா ஹமாரி பரமாதரணீய ராஜயோகினி அநேக ஆத்மாவோ கே பிரேரணா ஸ்ரோத் தீதி ஜீ கா ஆப் சப்கே தரப் சே எக் பார் புனா இஸ் சுந்தர் காரியக்ரம் மே பஹுத் பஹுத் ஸ்வாகத் ஹை. ஜெய்சே கி வீரேந்திர பாய் ஜி நே காஃபி சீஜே பதாயா கி ஹம் சப் பஹுத் 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 பாக்யசாலி ஹை ஜோ ஆஜ் ஹமாரே மத்ய தீதி ஜி அப்னா அன்மோல் ஔர் கீம்தி சமய நிகால் கர் ஹம் சப்கோ லாபான்வித் கர்னே கே லியே உபஸ்தித் ஹை. வைசே தோ தீதி ஜி அநேக குணோ கி கான் ஹை, லேகின் ஆப் ஐசி ஆதி ரத்னோ மே சே ஹை ஜோ சாகார் பாபா கி பாலனா, மாதேஸ்வரி ஜி கி பாலனா விசேஷ ரூப் சே லீ ஹை, தாதியோ கி பாலனா லீ ஹை. தோ ஹம் சப் தோ அநேக லோக இன்மே சே ஜோ பைட்டே ஹை, மம்மா பாபா கோ இன் சஜல் நேத்ரோ சே நஹி தேக் பாயே, லேகின் ஜப் ஹம் தீதி ஜி கோ தேக்தே ஹை தோ தீதி ஜி கே அந்தர் தோனோ பிரதிமூர்த்தி திகாய் தேதா ஹை. தீதி ஜி கே நயனோ மே, தீதி ஜி கே பாத்தோ மே பாபா மம்மா கி ஜலக் வோ பாலனா ஸ்பஷ்ட ரூப் சே திகாய் தேதி ஹை. தோ ஹம் சப் பஹுத் பஹுத் பாக்யசாலி ஹை ஜோ ஐசி ஆத்மாயே ஜோ தியாக் தபஸ்யா ஔர் சேவா கி பல் பர் ஆஜ் ஹம் சப் கோ பிரேரித் கர்தே ஹை. தீதி ஜி கா ஜீவன் சரித்ர பஹுத் படா எக் சாஸ்திர ஜெய்சே ஹை. அகர் ஹம் தீதி ஜி கா ஹி ஜீவனி சுனே தோ பஹுத் குச் ஹம் சப் கோ மில்தா ஹை, லேகின் சூக்கி ஆஜ் பிரஷ்னோத்தரி காரியக்ரம் ஹை இஸ்மே குச் பாய் பஹனோ கே பி சாதாரணதா ஜோ பிரஷ்ன பூச்சதே ஹை வோ சப் பி லியே கயே ஹை ஔர் குச் தீதி ஜி கே அனுபவ இஸ்மே சாமில் கியே கயே ஹை. மம்மா பாபா கே சாத் கா அனுபவ, தீதி ஜி கே லௌகிக ஜீவன் சே லேகர் கே அலௌகிக யாத்ரா தக் கா குச் குச் பாத்தே ஹம் சப் நே லியா ஹை. தோ ஆப் சப் பஹுத் பியார் சே தியான் சே சுனியேகா தோ இஸ்கா பஹுத் லாப் மிலேகா. தீதி ஜி ஆஜ் இஸ் சுந்தர் காரியக்ரம் மே ஆப்கே லியே பஹலா பிரஷ்ன யஹி ஹை கி பஹுத் சே பாய் பஹனோ கே மன் மே யே ரஹதா ஹை தீதி கி அவஸ்தா ஏக் ஜைசி நஹி ரஹ பாதி, கபி ஊபர் ஹோதா ஹை கபி நீச்சே ஹோதா ஹை ஔர் ஹம் சப் சாஹத்தே ஹமாரி அவஸ்தா ஏக் ரஸ் ஹோ, ஏக் ஜைசி சல்தி ரஹே. தோ அவஸ்தா ஏக் ரஸ் பனானே கே லியே ஆப்கா மார்க்தர்ஷன் சாஹியே.
ஓம் சாந்தி. சபசே பஹலே ஜின்ஹோ கே பாஸ் மாஸ்க் ஹை, கலே மே பஹனா ஹை, நாக் டக் கே ரக்கே, ஔர் ஜிஸ்கோ நஹி பஹனா ஹை ஜைசே சவேரே பி கஹா ஊபர் ஜாகர் பைட்டே, வஹா கேலரி மே பஹுத் அச்சி ஜகா ஹை, வஹா சே பி ஆப் சுன் சக்தே ஹை. இஸ்லியே ஜிஸ்கோ பி மாஸ்க் நஹி பஹனா ஹை ஜா ஊபர் ஊபர் ஜா பஹன்.
கோய் ஐசே ஹை ஜோ நஹி பஹனே ஹை,
யே தேகோ நா பஹன் சாம்னே பைட்டி ஹை.
ஹா தேக் லீஜியே, தீதி கா பார் பார் டைரக்ஷன் ரஹதா ஹை ஔர் ஹம் சப்கோ இஸ்கே ஊபர் பாலன் ஜரூர் கர்னா சாஹியே, யே ஹமாரா கர்த்தவ்ய ஹை. படே கோய் ஆதேஷ் தேதே ஹை, சிக்ஷா தேதே ஹை, தோ இஸ்மே ஹமாரா ஹி கல்யாண் சமாயா ஹுவா ஹை. ஔர் தீதி கி பஹலி நஜர் யே சப் மே ஜாதி ஹை சுரு சே, தோ லகா கே ரக்கே அச்சி தரஹ சே, ஔர் கிசி கே பாஸ் நா ஹோ தோ ஊபர் சாதன ஹை ஹமாரி பால்கனி மே பி பைட் சக்தே ஹை. ஜி தீதி அப் சப் லகா லீஜியே.
சாந்தி. ஏக் ரஸ் அவஸ்தா ரஹனே கே கா லியே ஹமே யே தியான் ரக்னா ஹை, ஜோ ஹம் ஜ்ஞான் சுன்தே ஹை उस ज्ञान का मनन चिंतन और धारण करना है। स्पेशली ड्रामा का हमें बहुत ही पक्का निश्चय होना चाहिए कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो गया अच्छा था, हो रहा है अच्छा है, और जो होना है अच्छा। और दूसरा, कर्मों की गति कई बुद्धि में क्लियर होनी चाहिए कि जो कर्म जिसने किया है उसका उसको फल जरूर मिलेगा, और इसके लिए हमें और किसी को दोष देने की दरकार नहीं, क्योंकि कई बार हम दूसरों को दोष देते हैं कि इसके कारण हमें हमारी अवस्था ऊपर नीचे हो गई है। खान पान की हमारी शुद्धि होनी चाहिए और पवित्रता की धारणा पक्की हो, क्योंकि जहां अपवित्रता है वहां कोई न कोई विकर्म होते रहेंगे और उसके कारण हमारी अवस्था भी ऊपर नीचे होती रहेंगे।
जी दीदी, बहुत सी बातें दीदी ने काफी स्पष्ट किया और हम सब के अधिकांश लोगों का अनुभव रहता है कि अवस्था एक रस नहीं रह पाती, कभी बहुत अच्छे कभी थोड़ा सा नीचेपन। तो इसके लिए दीदी ने बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। दीदी, दूसरा चीज है, आपके अनुभव से हम जानना चाहते हैं, उच्च पद प्राप्त करना है तो मुख्य किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, क्यों आखिर हम सब का लक्ष्य है ऊंचते ऊंच बनने का और ऊंचा पद प्राप्त करने का, तो इस ब्राह्मण जीवन में मुख्य कौन सी बातों को ध्यान देने की जरूरत है दीदी?
ऊंच पद पाना है तो पहले हमें पक्का निश्चय चाहिए हमको पढ़ाने वाला कौन है और इस पढ़ाई से क्या प्राप्ति होती है, क्योंकि बाबा कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। तो एक तो बाप में निश्चय, अपने में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, और श्रीमत पर चलना बहुत जरूरी है। दिन रात सेवा का ही ख्याल होना चाहिए, सेवा में ही मग्न रहना है। तो योग और सेवा के सिवाय और कुछ न हो, और बाप और वर्षा ये याद रहे, स्वदर्शन चक्र फिराते रहें, और अपने में निश्चय होना चाहिए कि ये सेवा करने से हम जरूर ऊंच पद पाएंगे।
जी दीदी, बहुत अच्छा। दीदी, हमारे विद्यालय के चार विषय हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इसमें कई बार बैलेंस नहीं रहता दीदी, तो चारों विषय के बैलेंस कैसे रहे उसका थोड़ा उपाय जानना चाहते हैं।
हमारी बुद्धि में क्लियर हो कि यदि हमें पास विथ ऑनर होना है तो एक भी सब्जेक्ट में हमारी कमी ना हो, चारों सब्जेक्ट पर हमारा पूरा अटेंशन हो। क्योंकि कई कहेंगे हमको तो सिर्फ सेवा में इंटरेस्ट है और सेवा के लिए फिर रात को देरी देरी से बाहर जाएंगे अमृत वेला मिस हो जाता है या मुरली भी मिस कर देते हैं क्योंकि बिजी है काम करने में या प्लान बनाने में या औरों से बातचीत करने में। तो ये देखना है कि अपनी जो नियम मर्यादाएं हैं उस पर पूरा चलना है, तभी पास विद ऑनर हो जी। तो लक्ष्य हमारा पक्का हो कि हमें पास विद ऑनर होना है। स्टूडेंट होते हैं ना
जी,
तो लक्ष्य रहता है कि हमको फर्स्ट क्लास या पास विद ऑनर होना है। तो उसी रीत से स्टडी करते हैं, एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो फेल।
जी दीदी, जी दीदी, बहुत अच्छा दीदी। दीदी आपके लिए एक व्यक्तिगत यही प्रश्न है आगे कि आपने एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा को प्राप्त किए दीदी, लंबी एक पूरा जीवन एक अनुभव से गुजरा है, आप अपने अनुभव जीवन में इस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखा दीदी?
अमृत वेला, क्योंकि अमृत वेला हमारा मुख्य कमाई का समय है। दूसरा, पढ़ाई में रेगुलर, पंक्चुअल और एकाग्रता रहे। मैं जब ज्ञान में आई, वाटरलू मेंशन में जाती थी, गांधी वाली रहती थी
जी,
डेढ़ घंटे की पौने दो घंटे की मुसाफरी होती थी
जी,
और हमने अपनी ट्रेन फिक्स की थी 5:20 की या 5:40 की
जी,
वो ट्रेन फिक्स थी। फिर रात्रि को अपना सब तैयारी करके सोती थी टाइम पर, टाइम से पहले पहुंच जाती थी
जी।
कई बंबई में रहने वाले इतने मेरे से पहले नहीं पहुंचते थे
जी, 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 जी।
तो पढ़ाई श्रीमत पर पूरा ध्यान शुरू से ही हमारा समर्पण भाव था कि बस बाबा की सेवा में तन मन धन लगाना है। अतूट निश्चय कि ये बाबा है, सच्चा ज्ञान है और इससे हमें उच्च पद प्राप्त करना है, और बाबा से अतूट प्यार। एक बाबा, दूसरा न कोई। शुरू से ही, इवन बचपन से ही नष्ट मोह थी
जी,
तो इसलिए न्यारा और प्यारा रहने का सहज हो गया
जी। दीदी हम सब देखते हैं दीदी जी आज भी जो यज्ञ की दिनचर्या है उसमें बहुत व्यवस्थित रहती है। आप सब एक दो दिन से जो आए हैं, दो दिन से देखे होंगे दीदी मुरली में बहुत पंचवन, बिल्कुल टाइम पर। ये सदैव की दीदी का नियम है, समय से पहले दीदी यहाँ पहुंच जाती है। और ऐसी ही दीदी का हमने देखा अमृत बेला और अपनी पढ़ाई लिखाई, जब भी जाते हैं दीदी मुरली की पैंट पूछेगी आज बाबा ने क्या कहा ऐसे पूछेगी, तो खुद भी उस चिंतन में रहती है और हम सब को उसी तरफ आगे बढ़ाती है। दीदी अनेक भाई बहनों का प्रश्न है कि अमृत बेला जैसे पावरफुल होना चाहिए वो नहीं हो पाता है दीदी।
अब शांति, बाबा हमेशा कहते हैं अपने सारे दिन के दिनचर्या पर ध्यान रखो। दिन में यदि हम कर्मयोगी है और कर्मेंद्रियों पर हमारा कंट्रोल है तो क्या होगा, अमृत वेला भी पावरफुल होगा। जब रात्रि को सोते हो बाबा की गोद में सो, और सवेरे जब उठो तो ये समझो हम सूक्ष्म वतन से बाबा के गोद से अब हम कर्म क्षेत्र पर जा रहे हैं। जैसे मम्मा का ये एम रहता था कि 2:30 बजे मेरा पीयूष से मिलने का अपॉइंटमेंट है
जी।
मुझे मिस नहीं करना है। ऐसे हमें भी ये बुद्धि में रखना है कि अमृत वेला हमारा पीयूष से अपॉइंटमेंट का टाइम है, हम मिस नहीं कर सकते। और देखो जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की अपॉइंटमेंट होती है कितना उमंग उल्लास से एक दो को मिलने जाते हैं और बातचीत वगैरह करते हैं। इसी रीत से उमंग उल्लास से बाबा को मिलने जाओ, बाबा से फ्रेंडली बातचीत करो, तो नेचुरली जितना बाबा से हमारा गहरा संबंध होगा, चाहे फ्रेंड का, चाहे साजन का, चाहे पीयू का, प्रीतम का, तो क्या होगा, सहज हो जाएगा अमृत वेला।
जी दीदी, बहुत अच्छी बात दीदी, आपने हम सबको मार्गदर्शन दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम उठ तो जाते हैं लेकिन जो बाबा के साथ का अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो पाता या झुटके में बीत जाता है। तो ये सुंदर विधि आपने बताया दीदी कि कैसे मम्मा योग करती थी बाबा के साथ, और वैसे ही हम सबको भी बाबा के साथ एक प्रकार से मिलन का टाइम हमने लिया है बाबा के साथ, तो वो अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा अमृत वेला बहुत पावरफुल हो जाएगा। दीदी मम्मा के लिए सुने हैं कि एक बार की हुई भूल कभी दोहराई नहीं। हम में से अनेक लोगों से ऐसा किसी का प्रश्न है दीदी कि कई बार वो भूल रिपीट हो जाता है, एक बार छोड़ देते हैं फिर वो भूल हो जाता है, तो अभूल बनने की विधि जानना चाहते हैं दीदी।
क्या है, कई बार कई लोग थोड़े अलबेले होते हैं, भूल हो गए क्या है, सब भूले करते हैं
जी जी,
तो ये हल्का नहीं रहे हम। भूल हुई, हमारी क्या कमी थी, किस कारण हमारे से भूल हुई, अभी हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उस पर गहराई से विचार सागर मंथन करना है और पूरा टेंशन देना है कि मेरे से ऐसी भूल दोबारा ना हो। क्योंकि जितनी अपने में दृढ़ता होगी, अटेंशन होगा, तो नेचुरली हम वो कर सकेंगे।
जी दीदी, तो अब भूल बनने के लिए दृढ़ता की जरूरत है। दीदी एक माता का प्रश्न है, लास्ट में अगर समय रहेगा तो आप सब भी किसी का प्रश्न हो कोई तो अपना प्रश्न लास्ट में पूछ सकते हैं दीदी से, अगर समय रहेगा तो। दीदी एक माता का प्रश्न है कि वैसे तो उनको योग में और कुछ याद नहीं आता है,
लेकिन बीच बीच में उनका एक छोटा सा पोता है, वो पोता याद आ जाता है।
जिसमें मुंह होता है ना, वो याद आता है। क्या है, माताओं का बच्चों में मुंह होता है और बच्चों से भी ज्यादा पोतों में मुंह होता है, पोता दोईता जो भी है। तो नेचुरली है उस माता का मुंह होगा
जी।
तो इसलिए याद जरूर आएगा। तो इसलिए नष्ट मोहा बनना पड़े, प्यार भले करो परंतु मेरापन है, मोह न हो। उसको क्या होता है, दादी होती है ना, वो बहुत प्यार से बच्चों को जो चाहिए देती है। और माँ बाप यदि गुस्सा भी करते हैं, दादी बचाव करती है।
जी जी, जी।
और कई है ऐसे हैं जो उसकी जो इच्छा है पूरी करते हैं
जी।
तो इसलिए क्या है कि पोतों का भी दादी में मोह हो जाता है, तो
जी।
दादी का भी पोते में मोह हो जाता है
जी। जी दीदी, दीदी अगला प्रश्न है कि भारत में हम सब देखते हैं यहाँ फिर भी आध्यात्मिक और धार्मिक वातावरण रहता है, बाबा का ज्ञान सुनाना प्राय आसान है कुछ कुछ स्थानों को छोड़कर। आप विदेश में गई, वहाँ पर अनेक लोगों को ज्ञान सुनाई, वहाँ की संस्कृति अलग, वहाँ की भाषा अलग, वहाँ की मान्यताएं अलग, आप किस बात के ऊपर फोकस करती थी दीदी जो वो लोग ज्ञान में चलने लग गए?
मैं जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया गई तो हमको मालूम नहीं था हम कितना समय रहेंगे
जी।
तो मेरे साथ जर्मनी के सुमन बहन थे, तो 7 दिन का कोर्स होता था
जी।
तो हम लोग, मैंने सुमन बहन को कहा 7 दिन में हमको सब कुछ दे देना है। पता नहीं वो आगे सुन पाए या नहीं। तो हम वेजिटेरियन बनना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, शराब सिगरेट छोड़ना है, 7 दिन में बता देते थे। तो रिजल्ट क्या हुआ, 400 कोर्स किया, उसमें से 2 बच्चे
जी,
2 ब्राह्मण बने। पीछे हम लोगों ने समझा कि थोड़ा
जी
सोच समझ कर उनको ज्ञान देना है। तो इसलिए जो कंट्रोवर्शियल बातें होती थी
जी
वो शुरू शुरू में नहीं सुनाते थे। आत्मा, परमात्मा, मेडिटेशन, कर्मों की गति आदि आदि 7 लेसन कराते थे, परंतु परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है
जी,
गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, ये बात नहीं छेड़ते थे
जी।
और अनुभव करते थे
जी।
तो क्या है कि नेचुरली उस समय इतनी बहुत सर्विस शुरू शुरू में नहीं होती थी, हम योग ज्यादा लगाते थे। क्योंकि भारत में तो क्या होता था कि बम्बई में मैं थी, कई दादियों का हमें सहारा था, कोई भी डिफिकल्टी होती थी दादी को फोन करते थे, वहाँ तो और कोई राय सलाह देने वाला नहीं। तो बाबा से योग लगाकर ही
जी।
बाबा की ही मदद लेने थे तो इसलिए योग से सेंटर का वाइब्रेशन भी हमने पावरफुल बनाया। तो एक दिन एक माता आई शाम को कोर्स करने, पहले दिन आई, कहती है आपके सेंटर में इतनी शांति क्यों है, आपका सेंटर थोड़ा गली से मेन रोड से दूर है इसलिए शांति है। मैंने कहा आपका घर मेन रोड पर है ना, तो वहां क्यों शांति नहीं है, ये यहाँ योग का प्रभाव है इसलिए शांति है
जी।
और कई बार तो क्या करते हैं आजकल, पहले पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स कराते हैं
जी,
पीछे उन्हों को राजयोग कोर्स कराते हैं, क्योंकि ज्ञान में कभी कभी कोई मूंझ जाते हैं।
हाँ हाँ।
तो स्ट्रेस फ्री लिविंग, पॉजिटिव थिंकिंग, ऐसे ऐसे भी कोर्स कराते हैं जिससे उनको पहले कुछ थोड़ा एहसास होता है कि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है
जी।
तो पीछे चल पड़ते हैं। और दूसरा क्या हुआ कि जब लोकल लोगों ने ये बात स्वीकार की अपनी भाषा में अपने कल्चर में, तो नेचुरली वो उन्होंने फ्रेंड को समझाने में बहुत सफल रहे। तो थोड़े शुरू में मेहनत ली, फिर उन्होंने ही
जी
अपने मित्रों को ज्ञान में लाया। तो वहाँ विदेश में क्या है, ज्यादा मित्रों के साथ संबंध अच्छा होता है, माँ बाप के साथ इतना नहीं। यहाँ तो क्या है, माँ बाप आएंगे बच्चे भी आएंगे, वहाँ फ्रेंड फ्रेंड को ले आता है
जी, जी।
और उसी रीत से सेवा की अच्छी वृद्धि हो गई
जी। दीदी हम सब समझ सकते हैं दीदी, कितना आप लोगों ने अपने आध्यात्मिक बल से वहाँ पर सेवाओं को आगे बढ़ाया। दीदी अनेक वर्षों तक विदेश में अकेली रही, खुद ही भोजन बनाती थी, झाड़ू पोछा भी करती थी, सेवा भी करती थी, कोई ब्राह्मणी नहीं, कोई साथ नहीं। और आज जो हम इतना वट वृक्ष विदेशों का भी जो देखते हैं, इसमें हमारी दीदी जी की बहुत बड़ी भूमिका विदेश सेवा में रही है। दीदी एक और जानने की जिज्ञासा है कि जब बाबा ने भारत में सेवा प्रारंभ किया 1952 में, तो उस समय दीदी यहाँ पर बहुत विरोध हुआ। शुरू शुरू में सुनते हैं कि कई जगह लोग दरवाजा बंद कर देते थे, कई जगह प्रदर्शनी नहीं लगाने देते थे। ये तो भारत की कहानी है, आपको विदेशों में भी इस तरह से विरोध का सामना करना पड़ा दीदी?
जब हम पहले लंदन में गए 1971 अक्टूबर में
जी,
तो क्या था कि पहले तो हमको एक इंडियन भाई ने अपना मकान किराए पर देने का फैसला किया था, तो इसलिए मैं अपना टूर आधा करके सैन फ्रांसिस्को से लंदन वापस गई
जी।
अब लंदन गई तो वो भाई का दूसरा मकान बन रहा था जिसमें वो शिफ्ट करने वाला था
जी,
तो वो तैयार नहीं था। तो मैं पहुंच गई थी तो जयंती बहन ने शुरू किया कि कहाँ मकान ढूंढे
जी,
तो एडवर्टाइज देखकर फोन करती थी, आवाज तो अंग्रेजी था तो कहते थे भले आओ देखो, पर जब देखते थे ये इंडियन मैन है, साड़ी में है, मकान चला गया।
जी जी, देते नहीं थे मकान।
क्योंकि क्या होता था उन दिनों में, इंडियन ऐसे करते थे, कहते थे हम तीन जने रहेंगे, तो तीन दिन में रहते थे, तीन रात को रहते थे।
जी,
मतलब छह जने रहते थे,
किराया तीन का देते थे।
कोई नाइट ड्यूटी वाले, डे ड्यूटी वाले, तो इसलिए इंडियन को कोई देने के लिए तैयार नहीं था।
जी,
दूसरा हॉल भी नहीं देंगे, क्योंकि इंडियन आर्य समाजी है
जी,
वो हॉल में धूप यज्ञ वगैरह करते हैं
जी,
तो उनकी दीवार फर्श खराब हो जाता है
जी।
और इंडियन का सत्संग माना भोजन जरूर चाहिए
जी,
तो भोजन से भी फर्श खराब हो जाता है। तो इसलिए हॉल मिलना भी मुश्किल हो जाता था
जी।
जब तक उन्होंने समझा कि ये लोग खाने पीने वाले नहीं हैं, भजन करने वाले नहीं हैं, शोर करने वाले नहीं हैं, घर गंदा करने वाले नहीं हैं, परंतु आखिर तो हमको वही मकान लेना पड़ा
जी,
जो इंडियन का था।
हा, हा, हा,
हा। दूसरा क्या है कि जैसे भी हमारी सेवा बढ़ती गई यूरोप में खास
जी,
और चर्च में देखा गया कि चर्चेज में उसके फॉलोअर्स कम हो गए
जी।
वैसे भी क्या है कि लोगों की चर्च में आस्था क्रिश्चियनों की कम हो गई, क्योंकि चर्च वाले कहेंगे यही तुम्हारी चर्च है, यहाँ ही तुमको अपना कंट्रीब्यूशन देना है, 10% कंट्रीब्यूशन जरूर देना है आदि आदि, तो उन्हों की आस्था कम हो गई कि आदेश एक देंगे और खुद सिगरेट बीड़ी पीते रहेंगे। और आपको मालूम होगा कि चर्च में जो प्रिस्ट है वो शादी तो नहीं करते
जी, जी, जी।
परंतु बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते थे
जी,
तो इसलिए लोगों की चर्च में आस्था प्रिस्ट में आस्था कम हो गई
जी जी।
तो खास पोलैंड और फ्रांस में एक साल तक विरोध किया
जी,
कि इन्हों को कोई फंक्शन करने ना देवे। तो ऐसे समझो मलेशिया में कायदा है कि मुस्लिम लोग कोई हिंदू संस्था में नहीं जा सकते
जी।
तो शुरू शुरू में हमारे पास कई मुस्लिम परिवार और आते गए, परंतु एक दिन एक बहन अपना मुस्लिम ड्रेस होता है ना जो ऊपर
जी,
वहाँ तो स्कार्फ जैसे पहनते हैं, वो पहन के सेंटर पर आती थी और कोई स्कूटर पर जाता था मुस्लिम, कहता है हमारे मॉस्क में क्या कमी है तुम यहाँ जाती हो। तो घर वालों का भी कई बार विरोध होता है, अड़ोसी पड़ोसी का भी विरोध होता है, और रास्ते पर चलने वाले भी कई देखते हैं कि ये मुस्लिम होकर हिंदुओं के उसमें जाती है, तो विरोध करना शुरू करते हैं। तो इसलिए मेजॉरिटी मुस्लिम बंद हो गए। इंडोनेशिया में खुले हैं, मुस्लिम हिंदू शादी करते हैं, क्रिश्चियन हिंदू शादी करते हैं, और हमारे पास क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम सब प्रकार के लोग आते हैं।
जी जी जी।
पर यूरोप में कई विरोध हुआ।
जी दीदी, बहुत सुंदर आपने पूरा यात्रा वृतांत, किस तरह के वहाँ सेवाओं में बातें आई, विघ्न आए और कैसे आप सब उस सब को पार किए दीदी, इसका सुंदर विवरण आपने सुनाया। दीदी, वापस आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने की एक इच्छा है दीदी, कि आप आपके लौकिक परिवार में जैसे आप 27 साल की उम्र में ज्ञान में आई दीदी, तो उसके पहले परिवार का क्या माहौल था, आप लौकिक में कितने भाई बहन हैं, माँ बाप का क्या व्यवसाय था, और वर्तमान समय कोई परिवार में कोई ज्ञान में है क्या दीदी?
लौकिक में माँ बाप, हम 6 बहने 2 भाई थे
जी।
उसमें से माता और पिता मम्मा बाबा से मिले
जी,
और जगदीश भाई ने हमारे माँ बाप को प्रदर्शनी दिखाए, समझाए
जी,
परंतु हमारे पिताजी कहे मैं नहीं मानता हूँ, पक्के वैष्णव थे माँ बाप
जी,
तो वो मानते नहीं थे। परिवार बड़ा था पर तो आपस में प्यार था
जी।
और हमारी बहन का लड़का और उसकी युगल वो ज्ञान में
जी
चल रहे थे
जी,
पर वो पति जी ने शरीर छोड़ दिया कोरोना में।
अच्छा।
65 ईयर का था
जी, जी।
कोरोना में शरीर छोड़ दिया
जी।
उसकी पत्नी जाती है सेंटर
जी। दीदी, पिताजी क्या करते थे दीदी? पिताजी क्या करते थे?
पिताजी बिजनेसमैन थे, अनेक प्रकार का उनका बिजनेस था
जी।
मेनली खडाऊ मिल्स वॉयल्स के उसमें सेल्स मैनेजर थे
जी।
और फिल्म इंडस्ट्री में भी उनका इंटरेस्ट था, डिस्ट्रीब्यूटर थे मुंबई के
जी,
तो वो प्रोड्यूसर से फिल्म खरीद करके थिएटरों में
जी
बॉम्बे में रिलीज करते थे
जी। जी जी जी। तो इतना सुंदर परिवार दीदी जी का था, और उस परिवार में से आप बाबा के ज्ञान में आई। और एक और छोटी सी हिस्ट्री दीदी का है कि दीदी की जो लौकिक पिताजी थे वो दीदी जी के शादी में खर्चा करना चाहते थे, तो उस पैसे को दीदी ने अपने पिताजी को कन्विंस किया कि जो खर्चा तुम मेरी शादी में करना चाहते हो उसके लिए आप एक अच्छा मकान बना दो, और मकान बनवाया अपने लौकिक पिताजी से, और उस मकान को ब्रह्मा बाबा जब थे साकार में उस समय ईश्वरी यज्ञ में पूरा दान करवाया। और जैसे वीरेंद्र भाई ने शुरू में बताया था कि पूरे ईश्वरी यज्ञ में पहला मकान, अपना खुद का मकान मधुबन के बाद दीदी जी के पिताजी ने बाबा को दिया था, साकार बाबा भी उस मकान में जा चुके हैं। तो ऐसे सुंदर परिवार से आप दीदी हमारे मध्य हैं, इतनी त्याग तपस्या करके आप इतनी ऊंचाई को प्राप्त किए हैं। दीदी, एक छोटा सा और प्रश्न है कि आप ज्ञान में कैसे आई?
ज्ञान में क्या है कि मैंने मेडिकल प्रैक्टिस की, तो ये लक्ष्य था मुझे समाज सेवा करनी है, बीमारों की सेवा करनी है, और इसलिए हमने लौकिक पिता से 17 साल की आयु में कहा या तो मैं पढ़ूंगी या तो शादी करूंगी, क्योंकि मेडिकल स्टडी 7 साल करने की है और बहुत सीरियस होती है। तो लौकिक पिता ने कहा भले तुम पढ़ो, तो पढ़ाई के समय मेरे साथ यूनिवर्सिटी में उषा बहन, रमेश भाई की युगल
जी,
वो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर और इंटर में साथ में पढ़ती थी। जब वो ज्ञान में आई, उसको भी थोड़ा टाइम लग गया निश्चय करने में
जी,
तो जब निश्चय हुआ तो मम्मा मुंबई में थी और वाटरलू मेंशन में हर संडे पब्लिक प्रोग्राम होता था और ब्राह्मण अपने पहचान वालों को बुलाते थे, तो उषा ने हमको एक संडे बुलाया। फ्राइडे फोन किया कि संडे तुम क्या करती हो, मैंने कहा मैं शाम को फ्री हूँ, क्योंकि उस समय मैं हॉस्पिटल में काम करती थी और संडे उस दिन मेरी ड्यूटी थी ऑन कॉल, इसलिए मैं घर नहीं गई थी। मैंने कहा ठीक है मैं आ सकती हूँ। तो संडे वहाँ गई सेंटर पर, पहले दिन मम्मा का प्रवचन सुना और प्रवचन के बाद उषा ने कहा कल से कोर्स करो
जी।
तो मैंने सोमवार से कोर्स शुरू कर दिया
जी। दीदी तो इस तरह से दीदी ज्ञान में आई, उषा दीदी आपको ज्ञान में लाने की निमित्त बनी और उसके बाद पहली मुलाकात आपकी मम्मा से उस समय हुई। यही मैं पूछना चाह रहा था दीदी, बाबा और मम्मा से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? जैसे मम्मा से तो आप शुरू हो गए, बाबा से पहली मुलाकात कब हुई दीदी?
तो मम्मा को तो पहले दिन ही मुंबई में
जी
वाटरलू मेंशन में मिली और सात दिन के बाद उषा ने हमें
जी
मम्मा के साथ इंट्रोड्यूस किया कि ये मेरी शकी है, डॉक्टर है
जी,
अभी कोर्स पूरा किया है। तो मम्मा ने कहा सब ठीक है, समझ में आता है
जी।
तो मैंने कहा मम्मा मेरी टीचर जा रही है, उस समय कुंज दादी आई थी पटना से
जी,
मुझे कोर्स कराया। तो मम्मा बाबा जब बम्बई आते थे तो कोई न कोई दादी को बम्बई बुलाते थे कि आओ रिफ्रेश भी हो जाओ, बम्बई देख भी जाओ। तो वो जा रही थी तो मैंने कहा मम्मा को, मम्मा ने कहा कोई ख्याल नहीं करो, निर्मल शांता दादी तुम्हारी पालना करेंगे। फिर 4 मास के बाद उषा ने हमको मम्मा के साथ भोजन के लिए बुलाया। तो उस समय भोजन के टाइम मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा मेरी इच्छा नहीं है कि मैं मेडिकल प्रैक्टिस करूं, मतलब उस समय मैं इधर उधर जॉब तो करती थी परंतु लक्ष्य तो था कि अंत में अपनी डिस्पेंसरी शुरू करें, तो इसलिए कहा मेरी इच्छा नहीं है कि ये प्रैक्टिस करूं। तो मम्मा ने कहा कि तुम जब बाबा से मिलो तब बाबा से राय लेना। तो बाबा से मैं पहली बारी मिली मधुबन में ज्ञान के 16 मास के बाद, क्योंकि मम्मा 9 मास तो वहाँ रही थी और दादी निर्मल शांता के साथ हमारा टूर बना
जी,
यूपी पंजाब का टूर करके अंत में हम मधुबन में आए
जी।
तो उस समय ब्रह्मा बाबा से पहली मुलाकात हुई
जी। दीदी बहुत सुंदर दीदी, कैसे बाबा से मिले, मम्मा से मिली, किस तरह से लौकिक परिवार से निकल करके आप
इतना सुंदर अलौकिक परिवार में एक सहभागी बनकर के इतना महान पाठ बजा रहे हैं। दीदी एक छोटा सा और व्यक्तिगत प्रश्न है, जानने की जिज्ञासा है। दीदी आप मुंबई जैसे माया नगरी में रही, आपके लौकिक या अलौकिक जीवन में कभी कोई माया आई हो दीदी, जिससे आपको निकलने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ा हो? लौकिक में आप 27 साल की उम्र में ज्ञान में आई, उसके पहले कहीं अटैचमेंट हुआ हो, कहीं लगाव झुकाव हुआ हो, या ज्ञान में आने के बाद? हम छोटे हैं दीदी, आपसे सीखने के लिए पूछ रहे हैं।
वैसे तो माया क्या होती है उस समय तो मालूम नहीं होता था, है ना, लौकिक जीवन में।
जी जी।
परंतु ये था कि शुरू से ही हमारी दृष्टि वृत्ति पवित्र थी, अर्थात कोई भाइयों में हमारा
जी
अट्रैक्शन नहीं रहा।
जी दीदी।
क्योंकि हमारे लौकिक भाई के जो मित्र थे
जी,
उनके साथ भी खेलना होता था, परंतु उनको हम भाई ही समझते थे
जी,
और खेलते थे। एक मित्र ने प्रपोजल भी दिया पर हमने कहा ये तो हमारे भाई है, शादी नहीं करनी हम
जी।
तो लौकिक में भी माया नहीं आई, क्योंकि क्या था कि हमारे परिवार में आपसी सब में प्यार था
जी,
तो प्यार की चाहना नहीं थी
जी।
क्योंकि क्या होता है जब लौकिक में प्यार नहीं मिलता है
जी,
तो आकर्षण होता है
जी,
कि हमें कोई प्यार करे
जी।
तो अलौकिक जीवन में भी ऐसी कोई माया नहीं आई। विघ्न आते हैं
जी,
ऑपोजिशन होता है, वो होता है क्योंकि ज्ञान में आई तो हमारा परिवार पक्का वैष्णव था और पिताजी व्यापार में थे सिंधियों के कनेक्शन में, तो सब सिंधी कहते थे कि आपकी बेटी लूट लेगी और शादी नहीं करेंगी
जी।
तो इसलिए उन्होंने अपना एक पंडित मित्र था
जी,
उनको मेरे साथ बहस करने बुलाया। उसने कहा कि तुम्हारी ये सच्ची गीता हमारी जो उस समय पुस्तक थी उसने पढ़ी, कहा ये गीता में ये कहते हैं परंतु सच्ची बात ये है आदि आदि। और मैंने लौकिक पिता से कहा देखो आप वहां के देखो
जी,
आपको कुछ खराब लगे तो मुझे ना कहना
जी।
उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम डॉक्टर हो, समझदार हो और कमाई कर सकती हो, डॉक्टर हो तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है, तुमको जो करना है करो
जी। दीदी तो दीदी की इतनी सुंदर निर्विघ्न यात्रा और पवित्रता के बल पर, जैसे दीदी का निजी संस्कार रहा है, जैसे दीदी सुना रही है कि लौकिक में भी इस तरह का जीवन बिताई और अलौकिक में भी इस तरह से, दीदी सच में हम देखते हैं दीदी आप प्यूरिटी के स्तंभ जैसे लगते हैं, कभी भी दीदी से मिलते हैं तो वो वाइब्रेशन पवित्रता के सहज रूप से हम सबको मिलते रहते हैं। तो ऐसी प्यारी हमारी दीदी की सुंदर यात्रा बेमिसाल है हम सबके लिए। दीदी आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे अनेक देशों में सेवा की, अनेक वर्षों तक सेवा किए, और वो सब सेवा छोड़ कर के आप मधुबन ज्ञान सुरर में आ गई। हम देखते हैं एक छोटा सा डिपार्टमेंट छोड़ना मुश्किल होता है, सेवा केंद्र छोड़ना मुश्किल होता है, इतना आसानी से कैसे आ गए दीदी आप?
मेरा भाग्य था शुरू से नष्ट हो
जी।
जहां भी रहना होता था, जैसे स्कूल में पढ़ते थे
जी,
कभी एग्जामिनेशन टाइम पर, क्योंकि हम कांदी वाली रहती थी, पढ़ती थी चर्च गेट स्कूल में
जी,
तो कभी कभी एग्जाम में अंकल के पास रहना होता था
जी,
क्योंकि कांदीवली से एग्जाम के लिए 1.5 घंटा करके बम्बई जावे तो समय व्यर्थ जाता है, तो हम अंकल के पास रहते थे, सहज ही था
जी।
और जब बम्बई छोड़ा
जी,
तब तो 6 साल ही सेंटर में हुआ था
जी।
और माताएं रोती थी कि हम गऊओं को छोड़ आप कहाँ जा रही है, पर हमने सेंटर प्रभाबेन और दादी पर छोड़कर
जी
हम तो चली गई। और ऑस्ट्रेलिया एशिया में तो 30 साल सेवा
की जी थी,
और 30 साल में वहाँ के सब लोकल जो सेंटर को देखने वाले थे वो बहुत मैच्योर हो गए थे, उन्होंने अच्छी रीत से अपने देश को संभाल लिया था
जी 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 जी।
तो जब मनोहर दादी बीमार थी और जाने ही वाली थी
जी,
तो अक्टूबर में चार्ली आया था, तो दादी जानकी ने चार्ली से पूछा कि हम निर्मला को यहाँ बुलावें, उसने कहा हाँ भले बुला लो
जी।
फिर दादी ने हमको कहा, हमने कहा भले, जहाँ बाबा सेवा के लिए बुलावे
जी,
हम तो तैयार हैं। तो हमको कोई चिंता नहीं थी क्योंकि वो लोग संभाल लेते थे, और बीच बीच में मैं चक्कर लगाती रही, और वो भी कोई भी बातें होती थी, ईमेल फोन तो आजकल सहज हो गया है, कुछ भी डायरेक्शन चाहिए तो वो लोग फोन से या ईमेल से पूछ लेते थे
जी। दीदी तो ये दीदी जी हमारी इतनी आसानी से सरल ढंग से सुना रही है, लेकिन सचमुच प्रैक्टिकल में हम कर सोचें कि इतनी विशाल साम्राज्य सेवा को छोड़ कर की दीदी आई, और इसे आप सब ने देखा होगा डायमंड हॉल में दीदी को बाबा स्टेज पर बुलाए थे और अपना दोनों हाथ दीदी के मस्तक पर रख करके वरदान दिए थे। तो ये सच में दीदी हमारी वरदानी आत्मा है, बाप दादा की विशेष कृपा दृष्टि के पात्र रहे हैं। दीदी एक और प्रश्न है कि आजकल जो नए बाबा के बच्चे हैं, जो अभी 2-4 साल से ज्ञान में निकले हैं, उन्हें कई बार दादियों की कमी महसूस होती है दीदी, दादियों की पालना नहीं ले पाए कई लोग, तो वो कमी महसूस ना हो उसके लिए वो क्या पुरुषार्थ करें, क्या फील करें दीदी?
समय बदलता जाता है
जी दीदी,
मम्मा ने शरीर छोड़ा, बाबा ने शरीर छोड़ा, और दादियां भी
जी
मेजोरिटी चली गई, तो नेचुरली है कि कमी तो महसूस होंगी, परंतु अभी तो यही करना होगा कि उनकी जीवन कहानी पढ़कर सुनकर उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी है, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं
जी जी।
जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो दादियों को जो ट्रेनिंग मिली थी
जी,
उन्होंने लक्ष्य रखा कि हम जैसे मम्मा बाबा ने हमारी पालना की है
जी,
हम सभी की पालना करें
जी,
और उन्होंने की भी। परंतु अभी इतनी बड़ी बहनें नहीं हैं, क्योंकि कई बड़ी बड़ी बहनों ने भी शरीर छोड़ा, प्रेम बहन है, चल बहन है आदि आदि, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। तो इसलिए अभी तो
जी बहुत अच्छी बात दीदी सुना रही है कि जैसे बाबा की जीवनी हम पढ़ते हैं तो बाबा से ऐसा फील होता है कि हम बाबा के साथ रहें। तो दादियों का भी बहुत सुंदर जीवन वृतांत की सब बुक बने हुए हैं, वो सब पढ़ करके हम दादियों के साथ का अनुभव कर सकते हैं। एक लास्ट प्रश्न है दीदी, फिर योग का समय हो जाएगा। आपके जीवन वृतांत को, कई चीजों घटनाओं को हमने सुना दीदी, और उससे हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। एक बार आपने सुनाया था दीदी, रात को न्यूजीलैंड गई थी आप अकेली, तो वो न्यूजीलैंड में क्या हुआ था, थोड़ा हमको उस समय का दृश्य सुनाइए दीदी।
क्या है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से निकल रही थी, और निकलने के पहले दाया काका करके अफ्रीका के जो थे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ तक आए हो, न्यूजीलैंड फिजी जरूर जाओ, क्योंकि वहाँ बहुत इंडियंस है
जी,
उनकी सेवा करके आओ। तो मैंने कम्युनिकेशन किया, क्योंकि उस समय तो न्यूजीलैंड में एक भी ब्राह्मण नहीं था, फिजी में भी एक भी ब्राह्मण नहीं था। तो मैंने कम्युनिकेट किया इंडियन एसोसिएशन से, तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया। फिर एक डिवाइन लाइफ सोसाइटी जो शिवानंद महाराज की यहाँ है
जी,
उन्होंने लिखा कि भले आप आओ, आप एयरपोर्ट से सिटी बस टर्मिनल तक
जी,
वहां से बस में आ जाना, और आपको सिटी टर्मिनस से कोई लेने आ जाएगा। अब हमारी फ्लाइट पहुंची 12 बजे, और करीब 1 बजे मैं सिटी टर्मिनस पर पहुंची, और देखा तो बाकी तो सबके कोई ना कोई आए, किसी ने टैक्सी लेकर सब चले गए
जी,
और मुझे लेने कोई आया नहीं था। तो मैंने कहा अभी अंधेरे में टर्मिनल भी बंद था, क्योंकि रात को तो
जी
कोई ऑफिस चालू नहीं होती है। तो मैंने भी टैक्सी की, और मेरे पास जो एड्रेस था वो उनकी ऑफिस का था, मुझे मालूम नहीं। तो हम वहाँ उसकी ऑफिस के पास पहुँचे, तो देखा कि ये तो ऑफिस बिल्डिंग है, सारी बड़ी बिल्डिंग, बड़ा ताला लगा हुआ था, और बड़ी बिल्डिंग थी। तो टैक्सी ड्राइवर बेचारा अच्छा था, कहता है चलो हम टेलीफोन बूथ पर चले। उसने कॉइन्स डाले, क्योंकि फोन करने के लिए भी तो कॉइन्स चाहिए
जी,
हमारे पास तो कॉइन्स भी नहीं थे। तो उसने अपना कॉइन्स डाल के फोन किया, तो वो कहे कि भाई हमारा आश्रम तो हेंडरसन में है
जी,
8 किलोमीटर दूर
जी,
जो भाई आपको लेने आने वाला था उसकी गाड़ी खराब हो गई तो इसलिए नहीं पहुंच पाया, आप टैक्सी में आ जाओ। तो फिर टैक्सी ड्राइवर वहां ले गया, और वहां भी ये गड़बड़ थी कि कुछ समय पहले वहां आग लगी थी
जी,
तो कई कमरे बंद थे, ऑफिस में भी अंधियारा था
जी,
सिर्फ फानस का लैंटर्न जी। और हमको कहा अच्छा चलो एक रूम में ले गए जहाँ एक न्यूजीलैंड के गोरी बहन थी
जी,
उसके साथ रहना था। अभी हम लोगों को तो इंडिया में आदत है कमरे में
जी रह लेते हैं,
कितने भी लोग रहते हैं, परंतु गोरो लोगों को तो
जी
इसमें भी इंडियन बहन सन्यासी बहन और उसको आदत थी सिगरेट मरवाना फूंकने की
जी,
तो उसको तो पसंद नहीं आया कि ये हमारे साथ रहती है पर क्या करें, हमारे पास भी कोई इलाज नहीं था। जब तक संडे आया तो इंडियन हॉल में हमारा भाषण रखा
जी,
तब इंडियन सब कहने लगे आप वहाँ एंडरसन में हो, बहुत दूर हो, आप शहर में आओ
जी,
हम इंडियन के घर में रखेंगे और आपको सत्संग इधर उधर कराएंगे
जी दीदी।
और उस समय न्यूजीलैंड में कोई इंडियन वेजिटेरियन नहीं था, सिर्फ दो परिवार
जी
ऑकलैंड में वेजिटेरियन
जी 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 जी,
पर धीरे धीरे उनको भी मालूम पड़ गया और एक शहर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे वो लोग प्रोग्राम बनाते गए, छोड़ के जाते थे, सामने कोई लेने आता था और यदि वेजिटेरियन घर नहीं होता था
जी,
तो जितना दिन मैं रही फ्रिज साफ करके हमको रखा
जी दीदी। तो इतनी सुंदर जीवन यात्रा, क्या क्या दीदी ने किस किन परिस्थितियों से दीदी गुजरी है और आज हम ये यज्ञ का इतना विशाल जो स्वरूप और इतने सुंदर देख रहे हैं, तो हमारी दीदी दादियों का त्याग तपस्या का प्रतिफल है। दीदी आप अपना कीमती समय निकाल करके हम सबको इतने सुंदर अपनी जीवन की यात्रा और ज्ञान की यात्रा कराए, आप सब भाई बहनों की तरफ से एक बार पुनः दीदी जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी दो मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।